Comisión.
अभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो, फिर कल की मुरली डिस्कस करनी है, कुछ एक हफ्ते का डिस्कस करेंगे, कुछ वरदान, कुछ स्लोगन, कल की मुरली, आज की मुरली, वर्तमान समय कौन क्या क्या पुरुषार्थ कर रहा है।
एक तो विशेष रूप से आत्मा का देखने का,
दृष्टि देखा जाए तो सारा ज्ञान एक ही बिंदु पर आता है, आत्म अभिमानी स्थिति और दूसरों को आत्मा देखना,
पवित्रता के लायक पूरा औरा बना हुआ है
स्वयं का।
हाँ, स्वयं में तूने पवित्रता के लायक तूने मेरे चार पुरुष फायदा और फायदा दो ही ना।
तो सबसे मुख्य पुरुषार्थ ये है, बार 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 स्वयं को आत्मा समझना। ये एक ऐसा पुरुषार्थ है कि जो अंत तक चलने वाला है, जब तक जीना है तब तक सीखना है और जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है। दो तीन दिन पहले मुरली में आया था ये वाक्य। तो ये ही एक मात्र पुरुषार्थ है कि देह को और स्वयं को अलग करना। देखा गया है कि जितनी समस्याएं हैं और जितनी परिस्थितियां हैं, सबको अगर उससे पार जाना है, एक है उसमें उलझना और उसको ठीक करने की कोशिश करना। एक समस्या आई है उसके बारे में सोचना सोचना सोचना, या फिर देहभान आया है किसी भी कारण से, कोई भी कारण से, परंतु वहां देहभान है, अभी उससे मुक्त होना है, तो वो देहभान का चिंतन करना कि कैसे उससे मुक्त होना, ये एक विधि है। पर देखा गया है कि जितना व्यक्ति देहभान का चिंतन करता है और देहभान से मुक्त होने के लिए और देह भान में ही रहता है, वो नहीं मुक्त हो पाता, उसकी विधि ही कुछ और है।
ढाई बजे मेरा सेवा है, एक भाई ने सुबह सुबह उठ के मतलब डिस्टर्ब किया 4 दिन पहले, तो मैं तो उसको बोल सकता हूँ कि आप संत रहा करो, ये क्या करो, मैंने उसकी कोई परवाह नहीं, उसको साइड किया अपने काम में।
अगर आपने देखा किसी को कोई गलती की है किसी ने, परंतु हम अगर कोई दूसरा भी देहभान में आता है उसको ठीक करने के लिए हम देहभान का आधार ले रहे हैं, तो ना वो ठीक होता है और ना हम, दोनों ही गिरते। देहभान खाई है, याद की यात्रा मंजिल है। देहभान में आने के बाद परसों की मुरली में था कि देहभान स्वधर्म को भुला देता है। फर्स्ट पेज, देहभान स्वधर्म को ही बुला देता है। देहभान के बहुत सारे रूप है, तो मैं बात कर रहा था कि देहभान से मुक्त होने के लिए देहभान का ही आधार लेकर, देहभान का ही चिंतन कर, या मनुष्यों ने जो कुछ लिखा है आज तक उनका आधार लेकर अगर किया जाए तो मुक्त नहीं हो जा सकता। देहभान से मुक्त होने की विधि ही है आत्माभिमानी स्थिति। देखने में विसंगति है, देखने में लग रहा है ये कैसे हो सकता है, ये परिस्थिति तो कुछ और ही है, इसको आत्माभिमानी स्थिति से कैसे ठीक किया जा सकता है। आत्माभिमानी, मैं आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, और ये परिस्थिति तो कुछ और ही है, इसका और इसका कोई संबंध नहीं दिख रहा है। आत्मा समझ लो, समझ भी लिया तो भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे भी लग रहा है, परंतु विधि ही वो है। कितना भी दूसरी विधियां जो भी है आज तक उसको ठीक करने की, वो सब फेल होगी। और हर एक ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जितने भी किसी से टक्कर लेना, किसी को समझाना सिखाना बोलना, ये सबसे ठीक होता ही नहीं है कुछ भी। विधि ही है स्वस्वरूप में स्थित हो जाए, बस यहां स्थित होते ही उसका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। ये अत्यंत सूक्ष्म बात है जो बाबा ने बताई है, ये बात किसी भी शास्त्र में नहीं है।
धीरे धीरे होगा कि ज्यादा,
कितना जल्दी हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं उस पर निर्भर है।
हमने देखा कि तुरंत इफेक्ट होता है,
कितना जल्दी और कितना शक्तिशाली रूप से आत्मा की शक्ति कम हुई है। आज की मुरली में है देवाला निकला है ताकत का, ताकत ही कम हुई है। ताकत मिलेगी कहां से? जब बुद्धि योग जो सर्वशक्तिमान है उससे लगेगा, तो ताकत कम हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, वृत्त कम हो गया है, दिया कम हो गया है, जलना बुझेगा तो नहीं परंतु शक्ति कम हुई है। कनेक्शन जोड़ने से ही ताकत आएगी और परिस्थिति आने के बाद ही कनेक्शन। आज बोला ना मुरली की लास्ट लाइन, लिंक तोड़ देती है माया, माया लिंक तोड़ देती है, वो ही टूट जाता है सबसे पहले, तो ये जो है यही टूट जाता है। तो सारा पुरुषार्थ, सारी मुरलियां एक ही बात पर आकर रुकती है, आत्म अभिमान स्थिति। तो सारा पुरुषार्थ इसलिए करना है कि हमारे और देह के बीच खाई उत्पन्न हो जाए। हम यहां हैं और ये यहां है, हम यहां हैं और ये यहां है। किसी की भी देह, एक तो अपनी ही देह से दूर ऊपर, फिर दूसरे किसी की भी देह आकर्षित ना करे। आंखें धोखा देती है, उसको सौंदर्य नजर आता है, वो भ्रांति है उसकी, भ्रम है उसमें कि उसको वो सौंदर्य लग रहा है, वो उसका भ्रम है और उस भ्रम में उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, इसके लिए छोड़ना नहीं चाहता है, अच्छा लगता है उसको। तो सबसे मुख्य पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा आत्मिक दृष्टि, यह है साधना, आत्मिक दृष्टि की साधना। ये दो ही अभ्यास मुख्य है, सारी मुरलियां यहां आके रुकती है और सबसे ज्यादा इसी में ही विघ्न है, देह आत्मा समझना।
महसूस तक नहीं हो पाता,
महसूस होने के लिए योग की साधना को बढ़ाना पड़ेगा।
फिर हम लोग जैसे कमल के फूल के ऊपर ऐसे कुछ लेकर के उसके ऊपर अभ्यास करते हैं,
हाँ अलग अलग रीति से। अभी समान क्या है, सारे समान वही है ना, समान अर्थात आत्मिक स्वरूप। केवल मैं आत्मा हूं ये कब तक करोगे? 10 साल कैसे करोगे? मुश्किल है। 10 साल तक एक ही असमान का अभ्यास करना या एक ही नशा लंबा समय तक कैसे चलेगा? भगवान मिल गया है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, भगवान पढ़ा रहे, नशा अब नहीं चढ़ रहा, तब चढ़ा था, भगवान पढ़ा रहे, भगवान मिल गया, तुम ये हो तुम वो हो। लंबा समय नशा चढ़े, वो नशा ही लंबा समय जब हो जाता है तो उसको समान में परिवर्तन हो जाता है। पहले था मैं आत्मा हूं, अब है मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या मेरा स्वरूप है, वो सारी बातें यहां आ जाती। तो ये दो मुख्य अभ्यास है। पहले आज की मुरली क्या क्या कहा आज की मुरली में अमित भाई?
अवर का तुम ही थे,
तुम ही थे,
देवी देवता तुम्हें, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे,
तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम ही सर्वोत्तम पावन थे। कल की मुरली में शब्द आया था सर्वोत्तम पावन तुम ही थे, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे। ये स्मृतियां है
विश्व का मालिक,
ये ना सारी स्मृतियां है, ये इतनी धुंधली हो गई ये स्मृतियां क्योंकि यहां आ गई ना आत्मा, इतने सारे जन्म ले लिए उसने तो बहुत कुछ ये सारा दब गया इधर की स्मृतियां। स्मृतियों को जागृत कैसे करेंगे? बार बार याद करना।
बाबा जैसे इसी हफ्ते में 2 बार का समझते हो कौन कह रहे हैं, आज भी बोला।
तो ये सारी स्मृतियां जो दब गई है, इतनी दब गई है कि उनका कुछ अभी याद नहीं कुछ। अगर हम मुरलियों को बाजू रखें और केवल याद करने की कोशिश करें, कुछ याद आ रहा है क्या मुझे, मैं सतयुग में थी, कुछ भी याद नहीं है क्योंकि इतना सारा उसमें दबा हुआ है। इन सब स्मृतियों को जागृत करने की विधि है रिपीटिशन, बार बार रिपीट करते रहना, एक बार बार याद दिलाते रहना स्वयं को। तो ये एक आज की मुरली में बात है कि तुम कौन थे, वो जो देवी देवता है वो हम ही थे। कल की मुरली में भी इसी बारे में 3 स्वरूप, एक तो वर्तमान फरिश्ता बोला बाबा ने, भविष्य का जो स्वरूप है वो देवता और मध्य का जो स्वरूप है वो पूज्य, 3 स्वरूपों का गायन। यथा शक्ति तुम जानते हो पर बाप स्पष्ट देखते हैं तुम्हारे सारे 3 स्वरूप। और क्या कहा आज?
सर्वशक्तिमान से
शक्ति लेनी। एक तो शक्ति आएगी कहां से? सर्वशक्तिमान से। और सबसे शक्तिशाली स्थान कौन सा है इस संसार का? मोस्ट पावरफुल प्लेस परम धाम। वहां शक्ति का स्टॉक है, हम वहां से शक्ति कहीं और से शक्ति लेते हैं, इसके पास उसके पास उसके पास, परंतु सारी शक्तियां वहां है। वहां से अगर लिंक जुड़ जाए तो ये परिस्थितियां जो भी बड़ी बड़ी है वो सब गिर जाएगी, अगर यहां लिंक जुड़ जाए तो सर्वशक्तिमान। ये एक पॉइंट था। और आज की मुरली में
तुम ही सर्वशक्तिमान थे,
तुम ही सर्वशक्तिमान थे। अभी बुद्धि योग फिर से सर्वशक्तिमान से लगा के तुम्हें फिर से सर्वशक्तिमान बनना है। और क्या करो?
मनमना
भाव मत त्याजो। वरदान, समय का क्या करो? बुकिंग करो बाबा, लगन मगन वर्णन और मिलन ध्रुवरिया, इन सब बातों में। तो यहाँ पे बात है मन के प्रोग्राम बनाने की, मन का टाइम टेबल बनाने, हमारा टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना हो किसी भी बात में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी संकल्प ऐसा ना आ जाए, व्यर्थ व्यर्थ संकल्प के तूफान, ये क्या है? विघ्न है कर्मातीत बनने में। मंडे का भी वरदान ऐसा ही था ना कि तुम्हें बेस्ट करना है, सफल करना है, वेस्ट को बेस्ट, तुम्हारा टाइम जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो स्थूल सेवाओं में तो बिजी है, परंतु यहां बाबा ने बात की है मन की, मन को कहीं इधर उधर नहीं भटकाना है, उसको मुक्त करने की विधि है क्या करो? सबसे पहला तो चार बातें बताई, लगन मगन, तीसरी चौथी वर्णन, दूसरी और पहली मिलन। बाबा से मिलन होता रहे, क्योंकि ये मिलन अमूल्य है, ये मिलन वंडरफुल है, ये मिलन महान है, ये मिलन साधारण बात नहीं है, इतना अमूल्य ये मिलन है। ये मिलन कभी सोचा नहीं था, कभी स्वप्न में नहीं था, ये अचानक की जैसे लॉटरी है और होमवर्क है, ये मिलन सदा मनाते रहना। तो निरंतर मिलन होता रहे, तो सबसे पहली बात है मिलन। फिर है वर्णन, वर्णन अर्थात ज्ञान का वर्णन कहो, ज्ञान सुनाना कहो, या सुनना सुनाना, ये सब सर्विस में आ जाए सेवाओं का। मगन और लगन, मगन हो जाना मतलब लॉस्ट पूरा, लगभग समान शब्द है लगन और मगन। तो परमात्मा प्रेम में लगन, परमात्मा प्रेम की लगन और उसी में मगन, ये चारों चीजें हैं, सब मन से संबंधित है। तो मन को बिजी कर देना है इसमें, ज्ञान के चिंतन में, मनन में, परमात्मा मिलन में, ज्ञान सुनाने में। तो ये विधि है उससे मुक्त होने की। और प्रसन्न चित्त तो कौन रह सकते हैं? लोगों ने परमात्मा बर्थ राइट है, सफलता। तो आज कल की मुरली पढ़ी पढ़ी है, कौन सी तारीख है? 15 है शायद, 15 ना, 15 मार्च 1979 विदेशियों से मुलाकात। तो बाबा ने क्या कहा उनको?
आपका स्वरूप बाबा आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन बाबा एकदम क्लियर
है, बाबा क्लियर दिखता है। तो बाप दादा किसको देख रहे? पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को देख रहे, देखकर हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा क्या है? अमूल्य रत्न है, विश्व के शोकेस में हर एक अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न को अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, परंतु बाबा तीनों ही स्वरूप को देखते हैं, वर्तमान, भविष्य और मध्य। कोटों में कोई, बाबा ने कहा एक तरफ आप और एक तरफ विश्व की सारी आत्माएं, तो आपके भविष्य और आपका वर्तमान क्या उनसे श्रेष्ठ है? एक तरफ ये और एक तरफ ये रखो तो। यहां जो बात है वो है पद्मा पदम भाग्यशाली, दूसरी बात है अमूल्य रत्न, शोकेस में, ये दो उसमें से समान है। ये हमने बहुत बार सुने हुए हैं, पढ़े भी हैं, पर अभी फिर से उसको कुछ नए ढंग से उसके ऊपर कुछ काम करना। क्यों भाग्यशाली, कैसे भाग्यशाली हूं, कब से भाग्यशाली हूं, और भाग्यशाली बन सकते हैं क्या, भाग्य को और कैसे बढ़ाया जाए, अभी तक तो है, और इसको कैसे बढ़ाए, उसके ऊपर चिंतन, इस भाग्य को और कैसे बढ़ाए।
भाग्य बनाना मेरा काम
है,
भाग्य में तो भगवान ने तो भाग्य दिया, उसको आगे
कितना बढ़ाना वो हमारा काम है। पिछली बार की जो संडे की मुरली थी ना, वही थी ना, सबको समय एक, सबका संकल्प एक, सबकी मंजिल एक, सहज मार्ग एक, सहयोगी स्वरूप एक, पुरुषार्थ का साथी, पुरुषार्थ का समय, गाइड, शिक्षक, शिक्षा, श्रीमत, स्थान, उसके बाद में वर्षा, कुल, वंश और सहारा, 17 बातें, सबकी एक ही है, फिर भी नंबर वार क्यों है, तो वही सारी बताई थी ना। फिर मोटापा, व्यर्थ तली हुई और सड़ी हुई चीजें, उससे मुक्त होना है।
तली हुई चीजें अच्छा लगता,
तली हुई चीजें आकर्षण, जितना ज्यादा आकर्षण उतना ज्यादा नुकसान, तली हुई चीजें अर्थात व्यर्थ समाचार सुनना सुनाना, यह तली हुई चीज, सड़ी हुई चीजें अर्थात बीती बातें और दूसरों के अवगुण देखना, ये दो और वो एक, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ड्रिल का अभ्यास करना पड़ेगा इसको कम करने के लिए, इस भार को, इस बोझ को। तो यहां बाबा फिर से क्या कह रहे हैं, दो समान जो दिए हैं कि मैं कौन हूं, विश्व के शोकेस में अमूल्य रत्न हूं, कोटो कोटो आत्मा एक तरफ और मैं एक तरफ, तो हमारा भाग्य उनसे श्रेष्ठ। फिर बाबा फोकस सारा जो किया है पूज्य स्वरूप पर किया है, द्वापर से अब तक का जो स्वरूप है वो पूज्य स्वरूप है। पूज्य स्वरूप के लिए क्या कहा, अभी भी उसमें चैतन्य मूर्तियों में चैतन्य देवता देखते हैं, संसार की आत्मा है, भक्त आत्माएं चिल्ला रही है और जो प्रजा बनने वाली है वो आह्वान कर रहे हैं, दोनों आह्वान कर रहे हैं, परंतु मुख्य रूप से बाबा ने भक्तों को कहा है। भक्त क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि अशांत है वो, क्यों कि प्रजा क्यों आह्वान कर रही है, क्योंकि राजनीति में हलचल है, राजनीति में हलचल है, और क्या कह रही है कि वो सतयुगी वैकुंठ राम राज्य लाओ। फिर बाबा ने कहा ना नीचे, हे टॉवर, पीस ऑफ टॉवर कब लाओगे, जय जयकार के बाद, हाहाकार के बाद जय जयकार कब होगा,
चैतन्य टॉवर,
चैतन्य
चला रहे,
फिर चिल्लाने की बात। हाँ, तो यहाँ पर मुरली जो है वो दो आधा, दो इसमें बोली है बाबा ने, एक तो बाबा से संसार समाचार सुना रहे हैं मुरली में, आज का संसार समाचार या संसार की हालत, ये शब्द बाबा ने प्रयोग किए, उसमें दो बातें, एक तो चिल्लाना और दूसरा चलाना। चिल्लाना कितनी, सात सात या नौ बातें है चिल्लाना,
बच्चे चिल्ला रहे,
कौन कौन चिल्ला रहा है, संसार की हालत का वर्णन है ये। बाबा ने कहा ये संसार समाचार आज बाप दादा सुना रहे,
बाबा ने को नाम लिया बच्चे, स्टूडेंट को याद किया, नहीं तो स्टूडेंट को
पढ़ाई के,
पढ़ाई वाले
स्टूडेंट, हाँ नहीं इसमें तो स्टूडेंट का ही बहुत सारा है, दो तीन है बच्चों के। अच्छा चलो, सबसे पहला चिल्लाना, हाँ भक्त चिल्ला रहे, नहीं उसमें क्या क्या है,
राजनीतिक स्थिरता के लिए चिल्ला रहे हैं,
दो है राजनीति वाले, एक तो कुर्सी और दूसरा एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं, और दूसरा कुर्सी के लिए अस्थिरता है कुर्सी की, उसमें राजनीति भी आ जाएगा और बाकी भी आ जाएगा, कुर्सी में बहुत सारी चीजें आ जाती है तो उसकी वजह से अस्थिरता है। फिर मन की अशांति की वजह से चिल्ला रहे, तन के रोग शरीर के रोग से कोई मुक्त नहीं है, टैक्स, कितने सारे लिस्ट है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू टैक्स, टोल टैक्स, संसार में टैक्स ही टैक्स है, उसके वजह से चिल्ला रहे। महंगाई बढ़ रही है ना, तो संसार में उसके वजह से चिल्ला रहे, और
पारिवारिक
समस्याएं हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बाकी जो है ना वो सब उसमें आ जाता है, वो राजनीति का अगर छोड़ दो तो दो वो सारी समस्या इसमें आ जाती है। तो एक तो शरीर के रोग, एक तो सबसे पहले टैक्स से चालू करो, टैक्स, फिर पारिवारिक समस्या ले लो, फिर तन के रोग। अभी जिनको तन के रोग नहीं है उसको मन के रोग, मन मन की अशांति, मन की अशांति या मन के विकार और वो सब कुछ। फिर उसके बाद में बच्चों का पढ़ाई का बोझ, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत, उनको उनका बैग देखा क्या कितना बड़ा रहता है, उसमें बुक्स कितनी रहती है, उनका होमवर्क, उनकी बैग्स, उनको कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड रहता है,
खुद नहीं ले जा पाता।
तो संसार में वो भी बोझ है, बाबा ने उस पढ़ाई के बोझ को याद किया उनके। और भी कोई है, एक तो ये महंगाई हो गया, टैक्स हो गया, पारिवारिक समस्याएं होगी, मन की अशांति, तन का रोग और महंगाई, राजनीति के दो, इतने हैं शायद। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी है। कोई ना कोई कारण से हर व्यक्ति इस संसार में दुखी है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो सुखी है। सब कुछ है उनके पास इस संसार में, सुखी होने के लिए हजारों किताबें लिखी गई है इस संसार में, हजारों शास्त्र है, ऐसे नहीं कि शास्त्र कहीं गुम हो गए, शास्त्र है, सब कुछ है, परंतु ये ज्ञान नहीं है बस। और सभी आत्माएं दुखी है, और दुख के कारण ये तो कुछ ही गिनाई है चिल्लाने के, इसके अतिरिक्त तो और कितने सारे दुर्घटना है, प्राकृतिक आपदा है, अपराध, कोर्ट केसेस, जमीन झगड़े, जायदाद, वो सब क्या क्या है। चिल्लाने के तो कई सारे कारण है, या उसी एक में जाए तो कितने सारे। पारिवारिक समस्या ही अगर ले लो, मनमुटाव, तनाव, अनबन, तलाक के केसेस कितने चलते हैं, छूटते नहीं उसमें से, सारी उम्र गुजरती जाती है, वो केसेस कोर्ट केसेस से छूट नहीं पाते। और संसार में जो कुछ है वो असमर्थ है ये सबको ठीक करने, चाहे राजनीति में ही हलचल इतनी, चाहे कोई भी आ जाए नेता, संसार की हालत नहीं ठीक कर सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि संसार समाचार है कि, तो बाबा ने पूछा है इनकी आवाज तुमको सुनाई देती है क्या, सुनाई देती है? हमारे दुख इतने ज्यादा है कि उनकी कहां से सुनाई देंगे। वो माताएं कहती है ना, बाबा कहते हैं कि भक्तों की आवाज सुनो, उनके दुख दूर करो। माताएं कहती पहले हमारे दुख तुम दूर करो, फिर हम उनके दुख दूर करेंगे। ब्राह्मण ही दुखी है तो उनके दूर को दुख कौन दूर करेगा। फिर वो दूसरा है प्रजा, प्रजा भी आह्वान कर रही है कि वो राज्य लाओ, सतयुगी राज्य, वैकुंठ राज्य, राम राज्य, उस राज्य को लाओ। तो ओवरऑल संसार जो है वो अति दुखी है, यहां कहीं पर भी, कहीं पर किसके पास भी शांति नहीं है। किसी भी घर में चले जाओ, ऊपर से कितना अच्छा दिखता है परंतु अंदर से दुख ही दुख। शरीर के रोग इतने सारे, नए 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 रोग है कि जिनके पास, जिनके ऊपर दवाइयां नहीं,
कई रोग का नाम मालूम नहीं है, कई रोग ऐसे हैं उसका नाम,
उनका नाम भी पता नहीं है, खोज कर रहे, सब कुछ है परंतु व्यसन। हमारे आईसीयू में अभी 3 पेशेंट भर्ती है। पहला जो है बेड नंबर 1, उसने 30-40 साल तक स्मोकिंग किया है, हर दिन 80 सिगरेट। मैक्सिमम कीर्तिमान जो बनाया रिकॉर्ड वो है 106 सिगरेट का। अच्छा। और अभी फेफड़ा पूरा खराब हो गया है। तो व्यसन तब किया मौज, और अभी दुख, अपने जाल में फंसा हुआ है, चाहते हुए भी नहीं निकल सकता। दूसरा एक है बेड नंबर 7, अभी उम्र है 35, जब बचपन से चालू किया दारू पीना, 15-20 साल का होगा, अभी पूरा लीवर खराब, पेट में पानी और हीमोग्लोबिन 3 हीमोग्लोबिन लेकर आए, इतना ब्लीडिंग नीचे से, ऊपर से खून की उल्टियां। तीसरा एक मरीज है, ये हो गया पहला तो लंग, दूसरा लीवर, तीसरा एक है किडनी, पेट नंबर 8, दोनों किडनी फेल, आज डायलिसिस पहली बार चालू की, फर्स्ट डायलिसिस डन टुडे। संसार में बहुत दुख है शरीर के रोग। अच्छा, शरीर जिसका अच्छा है उसको मन की अशांति, मन के विकार,
आपको भैया हॉस्पिटल में निरंतर बैठा हो भैया
वैराग्य वैराग्य अगर उत्पन्न करना है तो दो सबसे मुख्य स्थान है,
एक
शमशान घाट और दूसरा अस्पताल,
हाँ
जनरल वार्ड, और वो सब में बार बार जाते रहना चाहिए। किसी की भी कुछ हुआ ना चले जाना, बस टाइम निकालो और जाओ और देखो शरीर को जलते हुए देखना, बस रोज ये एक ही अभ्यास है, शरीर को जलते हुए आग की लपटों को देखो, कैसे बचा पाओगे अपने आप को वैराग से। हम पर एक बार जला दिया ना, एक बार से थोड़ी होता है, भूल जाता है, वो शमशानी वैराग होता है। बस जब देखा, देख रहे वहां खड़े रखे सभी एकदम सीरियस और आग जल रही है और देख रहे, हम भी सोच रहे कि हम भी चले जाएंगे, दुनिया में कुछ पड़ा नहीं है, संसार सब व्यर्थ है। और जैसे व्यक्ति घर में जाता है पत्नी और बच्चों को देखता है तो फिर उधर का मर्ज हो जाता है और इधर का इमर्ज हो जाता है, फिर वहां जाता है तो फिर लगता है सब बकवास है, कुछ नहीं है, संसार पति पत्नी बच्चे कोई काम में आने वाले नहीं है, हम भी एक दिन चले जाएंगे। उस समय के लिए एकदम ऐसा लगता है बस सब उपराम हो गए संसार, वहां जाओ घर में इसके उसका मुंह देखा फंसी। इसके लिए कहते हैं ना महात्मा बुद्ध के पास कोई भी संन्यस्त शिक्षित दीक्षित होने आता था तो कहते थे उसको पहले 3 महीना ड्यूटी है शमशान में जाओ और वहां बैठो, एक ही काम करना, सुबह से लेकर रात तक चिताओं को जलते हुए देखना, सुबह से लेके रात तक तो चिताओं को इधर आ जाइए, चिताओं को जलते हुए देखना, बहुत ही अच्छा अभ्यास है वैराग के लिए। दूसरा स्थान है वैराग दिलाने का अस्पताल, एक तो मृत्यु, दूसरा बीमारी और वृद्धावस्था। कहां है वो सौंदर्य, बूढ़ा व्यक्ति को पूछो जरा, इतनी कंप्लेंट रहती है कि उसमें से कोई भी ठीक नहीं हो सकती, बूढ़ा व्यक्ति हर चीज में सहारा लेना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकता है, भूख नहीं, कभी नींद नहीं, कोई अगर देखने नहीं आए तो दुख, वो दुख दूसरा ही है, एक अजीब अनूठा दुख है, एक बीमार पड़ गए और कोई देखने ही ना आए, बहुत दुख होता है वो तो बीमार, वो तो बूढ़ा। और बीमारी, बीमारी होने के बाद में क्या हालत होती, तो शमशान घाट को वैराग तो बिल्कुल, वैराग कम हो गया ना तो ये ज्ञान में रुचि कम हो जाती है, इसके लिए वैराग निरंतर ही बना रहना चाहिए। उसके लिए इन स्थानों पर बीच बीच में जाते रहना, कोई पूछे क्यों आया तो ऐसे बोल देना इनको देखने आया था बस, और देख के दूर से ऑब्जर्व करना कि ये है। यूरोप में जो पहले यूरोप में एक प्रथा थी, जब भी चर्च की घंटी बजती थी, चर्च की घंटी बजना मतलब किसी की डेथ हुई है, तो ये समझो कि मैं मरा हूं। अगर कोई अर्थी जा रही है तो ये मत पूछो किसकी अर्थी जा रही है, ये समझो कि मेरी अर्थी जा रही है, ऐसी इस तरह की कहावत थी। कोई भी मर रहा है तो क्या समझना, मैं मर रहा हूं। अपने मृत्यु को देखना, हमने अपने आप को कितना महत्वपूर्ण समझ के रखा है ना, कि मैं हूं तो ये है। सोचो अभी मैं चला गया, उठा के लेके जा रहे हैं शरीर को, रखा जला रहे हैं, प्रतिक्रिया देखो लोगों की, किसी को जल्दी जाना है कब होगा पूरा पता नहीं, उधर भोग भी तो बनाए हैं, वो भी तो
भोग क्या बना देखना,
पूरे भोग क्या बना है। तो हम सोच रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, हम सोचते हैं ये जो है विभाग है मेरे, मैं हूं इसके लिए चल रहा है, कोई दूसरा आ गया तो उसको कहां से कुछ समझ में आएगा, ये हमारी भ्रांति है। जो आएगा ना वो 10 गुना अच्छा रहेगा, इसके लिए किसी के कहीं जाने से कुछ रुकता नहीं है हमारा। इस ये सारी बातें वैराग की बातें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में एक श्लोक आता है, इन सब चीजों का चिंतन करते रहो। जन्म, जन्म में भी दुख है, मृत्यु को में भी दुख है, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा व्याधि बीमारी दुख दोषानुदर्शनम, इनमें दुख का दर्शन करना, इस संसार को दोष दृष्टि से देखना तो इस संसार से नफरत आएगी, वैराग आएगा। बाबा ने कहा छी छी है, पुरानी है, विनाश होने वाली है, काम की नहीं है, गई की गई, पतित विकारी नर्क, विषय वैतरणी नदी, रव रव नर्क, कुंभी पाक नर्क, काटो का जंगल, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न आज बोला है। इस संसार के लिए वैराग आने के लिए बीच बीच में इन चार बातों का तीन ले लो, जन्म तो नहीं, मृत्यु, जरा और व्याधि, इनका चिंतन निरंतर होते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
जरा मतलब
बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो इन सब का चिंतन बहुत जरूरी है, तीनों बातों का। हम कहां थे? नहीं, वो चिल्लाने पर, चिल्लाने से वैराग्य गए थे ना, नौ प्रकार के चिल्लाने। तो एक तो टैक्स, टैक्स चलो बहुत ये हो रहा है, फिर है महंगाई बढ़ रही है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता है, बाहर लोगों को बहुत ज्यादा पता चलता है, जो मिडिल क्लास वाले हैं ना उनको ज्यादा पता चलता है वो। फिर मन हो गया, मन के अशांति, तन के, फिर शरीर के रोग, पारिवारिक समस्या। अगर ये एक ही ले लो तो उसमें कितने सारी आ जाएंगे, ये सारी बाकी जो है ना उसमें आ गई। अगर देखा जाए तो परिवार, एक परिवार ले लो तो उसमें कितनी सारी समस्या है। एक ही कोई परिवार ले लो जिसमें शायद केवल तीन ही लोग हैं, उनमें भी कितनी समस्या है। बच्चे का एडमिशन से लेके, तो बच्चे की पढ़ाई से लेके,
जॉब का, शादी का,
जॉब का, शादी का,
हाँ, बच्चे की सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी,
बिजली के बिल का,
बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज का, प्लानिंग, फोन, हर चीज का। फिर वो तो, ये तो भी ठीक है, अंतर कलह, हाँ, अंतर कलह जो है ना,
संस्कार नहीं मिलना,
हाँ, संस्कार नहीं मिलना, झगड़ा, झगड़ा, मनमुटाव, अंतर कलह, वो इधर देखता है तो वो उधर, वो इधर से आ रहा है तो ये इधर, झगड़ा।
भोजन कर दिए, भोजन भी दे लिया, ये बना दिया,
हाँ, ये बनाना था, वो क्यों बनाया, ये बनाना था, ऐसे क्यों बनाया,
सीरियल पे झगड़ा होता है,
हाँ, सीरियल, टीवी, मैक्सिमम बहुत परिवार की समस्या तो इतनी है कि उसकी तो लिस्ट ही अनगिनत है, सागर जैसा है। तो वो भी आत्मा उसके वजह से भी चिल्ला रही, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं। और राजनीति, दो बातें बताई उन्होंने, कुर्सी के लिए सारी लड़ाई जो है वो कुर्सी के लिए, और एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे राजनीति में, वो भी बात कही। तो नौ प्रकार का चिल्लाना, एक है चिल्लाना, उसकी आवाज तुमको सुनाई देनी चाहिए तो क्यों नहीं देती है? संसार में दुख बहुत है, हम अगर जाए बाहर तो खुद अगर सुरक्षित नहीं है तो खुद भी दुखी हो जाएंगे, उनके दुख दूर करते करते। पहले स्वयं ही शक्तिशाली बनना तो ही दुख दूर किए जा सकते, और थोड़ा दूर रहकर किए तो बहुत ही अच्छा है, एक ही स्थान यहीं पर बैठकर, जब अवसर मिले तो जाओ, समीप जाकर दूर करना, परंतु जब दूर है तो वहीं से सकाश द्वार। तो बाबा ने कहा है उनके आवाज सुनो, ठीक है, ये हो गया। फिर यहां तो थोड़ा सा डाइवर्ट किया, वो बाद में आएंगे हम उसके ऊपर। फिर वो चलाने के बारे में कहा, चलाने के लिए क्या, ये संसार अभी चल रहा है, कैसे चल रहा है, धक्के से, पहिए से,
दवाई से,
दवाई से, दवाई या कम पड़ रही है, इसमें बहुत सारे विभाग हम कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र। एक तो व्यक्तिगत, व्यक्ति भी चल धक्के से ही चल रहा है, जैसे कि ऑफिस में जाते कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना है, करना है कर रहे हैं, कोई कोई प्यार से करते हैं कि बाहर, बहुत कम, खुद भी चला रहे खुद को धक्के से, हाँ, जो भी है, सारे संसार में जो भी कार्य क्षेत्र है, ऑफिस, सरकारी, सरकारी कर्मचारी कैसे काम करते हैं, आते कितने बजे, जाते कितने बजे, और बीच बीच में क्या क्या करते हैं। तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, परिवार भी धक्के से ही चल रहा है, समाज जो है वो भी धक्के से ही चल रहा है, राष्ट्र जो है वो भी धक्के से ही चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय देखो वो भी धक्के से ही चल रहा है, एक कैटेगरी ये हो सकती है, धक्के से चलना या पहिया लगा के, जैसे आज कहा ना उसमें साधन से, आज की अपनी दुनिया में साधन को जैसे पहिया बना दिया, वो सब उसके आधार से चल रहे हैं। तो आधार मतलब पूरी सृष्टि को देखो, पर्यावरण उसमें आ सकता है एक विषय, ये जो कुछ हो रहा है पर्यावरण में तमो प्रधानता की ओर जा रही, कब तक चलेगा, कब विनाश होगा, प्राकृतिक आपदा और होने वाली है, ये सारे बहुत सारी भविष्यवाणियां पहले भी हुई थी और अभी भी है। तो एक तो पर्यावरण की विषय, फिर अपराध अगर ले लो, अपराध पहले जितने थे 20 साल पहले या 50 साल पहले और अब जितने हैं बहुत बढ़ गए, जबकि अभी सब कुछ अच्छा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ज्ञान भी बहुत है, दवाइयां भी बहुत, ये सब कुछ है, नैतिक शिक्षा भी है, नई नई संस्था, आध्यात्मिक संस्थाओं की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी है, बहुत सारी आध्यात्मिक संस्था है, परंतु अपराध तो बढ़ रहे हैं ना, तो ये भी वैसे ही हो गया ना, जैसे चल रहे धक्का देके चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपराध बढ़ रहे, पर्यावरण की समस्या है, राजनीति की समस्या भी यहां आ सकती है। तो सारा संसार जो है प्राकृतिक आपदा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, ओवर क्राउडिंग, पूना में जो यरावड़ा जेल है वहां पर उनकी जो जेल जो है ना, यरावड़ा जेल सुना है ना पूना का, अभी कुछ बहने वहां सेवा के लिए जा रहे उनकी कैदियों की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां जो संख्या है मतलब रहने का जो स्थान है वो 2300 लोगों का है और जितने लोग रह रहे हुए 4000 कैदी,
सब जगह डिस्ट्रिक्ट जेल में सभी में ऐसे ही,
हाँ
मैक्सिमम प्लेस
बहुत जगह पूरा भरे हुए हैं, उसमें तो कई सारे ट्रायल वाले हैं, मतलब अभी उनका चल रहा है, पता नहीं अभी क्या होगा बंद करके रखा है तो उनका जो होगा देखेंगे बाद में उनको भी निश्चित होना है सजा तो वो उधर पड़े हुए हैं, तो इतने अपराध भी बढ़ रहे हैं, कैदी, फिर टेररिज्म, आतंकवादी, माओवादी, ये सब जो है ना, ये सब सृष्टि को जैसे कितना भी कोई कोशिश कर रहा है, बीमारी भी ले लो कितनी नई 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 रोज नई 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 बीमारी जिनका कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा पहले, वैसी बीमारी अभी है, 100 साल पहले जो बीमारियां थी ही नहीं कभी उनका अभी इतना आ जाता ये है। विज्ञान की प्रगति, विज्ञान यहां फिर वो बॉम्ब्स न्यूक्लियर वेपन्स अभी जितने हैं ये भी जैसे कि एक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाँ कभी भी किसका थोड़ा सा सिर अगर फिर गया तो कोई भी बटन कहीं पे भी दबा के किसको भी खत्म कर सकता है। तो बाबा ने इस मुरली में संसार का समाचार सुनाया है विदेशियों के सामने,
कोई समाचार देखने की सुनने की जरूरत, बाबा सुना दिया तो मतलब कोई देखने की जरूरत नहीं,
ये वर्ल्ड टाइम्स है नहीं, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड टाइम्स है, वर्ल्ड टाइम्स में सृष्टि के आदि मध्य अंत का इतिहास है, सृष्टि पहले कैसी थी, बीच में कैसी थी, अब क्या है और अंत में क्या होने वाला है, इतना पूरा इतिहास किसी भी पत्रकार के पास नहीं है, ऐसी सेंसेशनल न्यूज, हॉट सेंसेशनल न्यूज ये बाबा ने सुनाई है। तो इस मुरली में संसार समाचार या संसार की हालत, ये दो बातें, फिर उसके बाद में फिर से पीछे आ जाओ, चिल्लाने के बाद में बाबा ने पहले फिर वो थोड़ा विस्तार यहां किया है कि दो स्वरूप, पूज्य स्वरूप का वर्णन चालू था ना कि तुम्हारी पूजा हो रही है, तुम्हारी मूर्तियों में चैतन्य देवताओं को देखा जा रहा है, भक्त और प्रजा आह्वान कर रही है, तो यहां बाबा ने वैष्णव देवी और हनुमान का उदाहरण दिया है, लास्ट सो फास्ट बोला है पहले और फिर वो टावर ऑफ हे, टावर ऑफ पीस, जैसे बाप टावर ऑफ पीस है तुम्हें भी टावर ऑफ पीस बनना है, जैसे फरिश्ता बनकर उनको क्या करना है, उधर ले जाना है राम राज्य में, उधर ले चलो, ऐसे आह्वान कर रहे वो आत्माएं, तो हनुमान और दूसरा वैष्णव देवी, यहां पर तुमको क्या बांटने का अभ्यास है,
गति सदगति
नहीं, यहाँ क्या बांटने का अभ्यास है, टोली, तो अभी कौन सा अनूठा प्रसाद बांटो गति और सदगति का, तो तुम कौन हो? मास्टर गति सदगति दाता। और आत्मा की लाइन लगी हुई है लंबी, और लाइन बढ़ती ही जा रही है। दो स्वरूप, एक हनुमान और दूसरा वैष्णव देवी। हनुमान क्या करता है? वो तो गणेश है, वैसे ये भी करता है। हनुमान का क्या? संकट मोचन। हनुमान की किस किस ने भक्ति की है भक्ति मार्ग में? एक दो तीन आपने भी की है ना?
सौ का बोला था जी।
तो हनुमान की उधर नक्की पे मंदिर भी था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान गुण सागर है। जय कपीस पिहु लोक उजागर, सारे लोक को उजागर करने वाला है। तो भक्त उसके पास जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन जाता है? जो ब्रह्मचारी है उसका वो आदर्श है, ब्रह्मचर्य का आदर्श है। एक तो पवित्रता का आदर्श, दूसरा वो अति ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, अति चातुर, उसमें है ना हनुमान चरित्र। राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे को आतुर है वो, और बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान है।
हनुमान जब क्वेश्चन में कभी नहीं आया, जैसे अर्जुन क्वेश्चन।
हाँ वो तो अर्जुन तो एक अलग प्रकार का भक्त है। अर्जुन में बहुत सारे संशय है और सब कुछ भरा पड़ा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
कहा
राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो वो तो एक उच्च कोटि का भक्त है। तो वो हनुमान का लेवल बहुत ऊंचा है, उसकी तुलना किसी से नहीं। अंगद भी था उधर, उसका इतना गायन नहीं है, उसका खाली वो पैर वाला गायन वो भी उतना ही शक्तिशाली था, परंतु हनुमान का जो निश्चय था वो बहुत ज्यादा था।
पूरी बंदर सेना की वही था लीडिंग।
हाँ लीडिंग, और बुद्धिमान भी बहुत था ना। यही तो अंतर है दोनों में, अंगद और हनुमान में। अंगद इतना बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, और उसमें अहंकार भी थोड़ा बहुत था ना। उसने बोला ना, अगर तूने पैर हटा दिया तो सीता तुम्हारी, ये अहंकार है सूक्ष्म में एक्चुअली। राम से बिना पूछे ये भी हल्का तो चलो ये निश्चय बहुत है, परंतु ये भी ऐसा हनुमान ने कभी नहीं किया। तो हनुमान किसका? ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। अतुलित बल धामा, किसका प्रतीक है? बल का, शक्ति का, शक्ति का प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। उसके पास अष्ट सिद्धि है और नव निधिया है। अष्ट सिद्धिया आठ शक्तियां और नव खजाने, निधि अर्थात खजाने। वो है भक्ति के आठ अष्ट सिद्धियां। अष्ट सिद्धियां पता है ना, अहिमा महिमा गहिमा गरिमा प्राक्य, ये आठ सिद्धियां। एक है हल्का हो जाना, एक है भारी हो जाना, एक है बड़ा हो जाना, एक है छोटा हो जाना, एक है कहीं पर भी पहुंच जाना, एक है जो वस्तु चाहिए वो प्राप्य, वो सामने आ जाना। ऐसी आठ सिद्धियां है उधर, और हमारी आठ शक्तियां जो बाबा ने गिनाई है, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, वो सारी जो शक्तियां है, हाँ, परखना निर्णय ये करना, समेटना संकीर्ण विस्तार को संकीर्ण सहयोग, ये हमारी आठ शक्ति। उधर फिर खजाने हैं नव, नव निधिया कहा है उधर। हमारी नव निधिया अलग है, हमारी नव निधिया तो पता है ना, नव खजाने हैं हमारे। खजाने अनगिनत है, पर नव मुख्य है। ज्ञान गुण शक्ति संकल्प समय पुण्य कर्म, श्वास समय में आ गया, पुण्य कर्म और खुशी पवित्रता और दुआएं, ये नौ खजाने हैं हमारे। ऐसे और भी बहुत है, बोल भी एक खजाना है, संतुष्टता भी खजाना है, वैसे तो अनगिनत है पर मुख्य ये है। तो हनुमान प्रतीक किसका है? अष्ट शक्ति नवनिधि के दाता, उसको असपरदीन, उसको जानकी ने दे दिया ना वरदान। तो ऐसे भगवान का वरदान जिनको है, अष्ट शक्तियां भी हमारे साथ है और नव निधियां भी, वो हनुमान हम है। और हनुमान किसका प्रतीक है? निश्चय बुद्धि है, संपूर्ण निश्चय है उसको।
हनुमान एक उड़ते ही, मतलब जैसे एक
हल्का उसमें है, शक्ति है उसमें, सारी शक्तियों में आ जाता है। वैसे वो उड़ता है, चलो वो भी एक है। पवन पवन सुत आज्ञाकारी है, निर्भय उसको कोई डर नहीं है किसी भी बात का,
निरंकार,
निर्भय,
निरंकारी,
निरंकारी, उसमें अहंकार भी नहीं है कोई, जो कुछ करा रहा है उसके रोम में राम समाया हुआ है,
सच्चाई बहुत है,
सच्चाई बहुत है।
एक दिल वाला कहेंगे जो जिसने दिल में राम को,
एक व्याख्यान आता है, एक व्याख्यान है उसमें तुलसीदास जी है कि सीता जी से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाते हैं, तो वो मेरे हैं, तो हनुमान क्या करते हैं पूरा सिंदूर ही,
सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया। चलो वो भी बताते हैं। तो ये सारी भक्ति मार्ग में द्वापर से जो कुछ लिखा गया है ये सब हमारा यादगार है। एक हम हनुमान के स्वरूप में भी अगर स्थित हो गए, संकट मोचन हनुमान, मैं हनुमान हूं और सामने भक्तों की लाइन है, एक करके आ रहा है, एक घंटा तो योग आराम से हो जाएगा।
संकट मोचन और विघ्न विनाशक में,
संकट को दूर करने वाला, मोचन करना, दूर करना, वो तो विघ्न विनाशक इसको कहा जाता है, गणेश को, डिफरेंस कुछ नहीं है, शब्द इसको भी कह सकते हैं आप, विघ्न विघ्नहर्ता तो ये भी है, हनुमान भी तो करता है ना ये सब।
संकल्प आप देखोगे सदगति, सदगति की देना है, संकल्प के द्वारा देना है।
हाँ, बाबा ने यहाँ जो बात कही है प्रसाद वाली, तो वो भक्त लाइन में है, लाइन बढ़ती जा रही है, तुम हनुमान हो तो तुम्हें प्रसाद देना है, कौन सा, गति का और सदगति का। अभी गति अर्थात मुक्ति, कोई आत्माओं को मुक्ति चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति का स्टैंप लगाओ, जिसको जीवन मुक्ति चाहिए उसको जीवन मुक्ति का स्टैंप लगाओ, नीचे सिग्नेचर भी करो, एक मूर्ति में बोला था भगवान ने,
कैसे मानो उसका।
हाँ, यहाँ भी बात है, पहले तो ये ज्ञान बीज डाल देना, और जिसने इस बीज को स्वीकार कर लिया मतलब वो देवी कुल की आत्मा है। यहाँ बात वही है कि कुछ आत्माएं परमधाम जाएगी और कुछ आत्माएं फिर उधर आएगी सतयुग में। अभी जिनको सतयुग में आना ही नहीं है वो मोक्ष मुक्ति में जाएगी। यहाँ एक तो हाँ
बाबा ने मुरली में बोला था मुक्ति और गति और सदगति सभी आत्माओं को मिलती है,
गति और सदगति सब सभी आत्माओं की। यहाँ ये वाक्य को समझने का जैसा है, वो वाक्य क्या कहेंगे, शब्दार्थ नहीं लेना है, भावार्थ लेना है। यहाँ पर भावार्थ लेना है, अर्थात सभी थोड़ी ना सतयुग में आएंगे। हाँ, मतलब दोनों की बात, पर सभी आत्माओं को एक तो है कि सभी को बाप का परिचय मिलेगा, सबको बाप का परिचय दे देना एक बार, लास्ट में तो सबको मिल जाएगा, तब सभी आत्माएं पावन बनकर, चाहे हिसाब किताब या योग से, जो योग से नहीं बनेगी वो सजा खाके, और वो सतयुग में नहीं आएगी,
भोगना।
हाँ, भोगना वो जिनको ज्यादा है वो तो बाद में ही आएगी। तो यहाँ जो बात है गति सदगति, पहले तो समान में स्थित होना, जो बाबा ने कहा तुम मास्टर गति सदगति दाता, जो भी आत्मा, जैसे ज्ञान सरोवर में कितनी सारी आत्माएं आती है, ज्ञानी अज्ञानी सब प्रकार की आती है, जो अज्ञानी है उनके लिए ये संकल्प है कि इनको भी मुक्ति, अभी क्योंकि मुक्ति तो सबको चाहिए ना, ये इतना सारा चिल्ला रहे, इतने सारे दुख है संसार में, तो मुक्ति तो उनको चाहिए, तो उनको मुक्ति भी हम ही देंगे, उनको तो सतयुग में आना नहीं है, पर सतयुग में आना ही सारी आत्माओं का लक्ष्य भी नहीं है, उनको तो पता ही नहीं ना सतयुग, और ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, तो वो आत्माएं छूट जाएगी अपने दुखों से। इस देह में अभी कितनी आत्माएं ऐसी है, हॉस्पिटल में जाओ तड़प रही है पर शरीर छूटता नहीं है, 10-10 साल 15-15 साल कैंसर फैला हुआ है, इतनी बीमारी है परंतु इतना दर्द है, पर शरीर छूटना हमारे हाथ में ही नहीं है ना, वो तो जब तक चुकतू नहीं होंगे हिसाब किताब नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी करो। हर 15 दिन में एक पेशेंट ऐसा आता है कि जो पॉइजन ले लेता है,
माउंट बताइए क्या क्या पीड़ा होती बताइए,
किसमें किसको पीड़ा।
मुझे बताया था कि कैंसर वार्ड में ना कई मरीज सर फोड़ फोड़ के रोते हैं, अपना हाँ, पेन होता है।
बहुत दुख रहता है, बहुत दुख रहता है, कई मरीज ऐसे होते हैं, सबसे पहले तो उनको मिलने को आता नहीं, घर वालों ने छोड़ के चले गए। हमारे पास एक पेशेंट छोड़ के चली गई जिसको बर्न हुआ था, पूरी जल गई थी, तो उसके पति ने डाल के गया, उसके बाद कभी आया ही नहीं देखने, वो मर गई 6-7 महीने के बाद। तो एक तो वो बीमार वो है कि मुझे कोई देखता नहीं है, मेरी कोई केयर नहीं करता, ये एक दुख बहुत बड़ा दुख है। दूसरा एक है कि अभी कैंसर जब फैलता है तो हड्डियों में जब जाता है तो बहुत सीवियर दर्द होता है, पेन होता है, पीड़ा होती है, बोन पेन, फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं, खाना है पर इच्छा नहीं होती, इच्छा खत्म हो जाती है। अगर वो कैंसर इधर लीवर में इधर उधर फैला हुआ है, फिर उल्टियां होती रहती है, खांसी ऐसी होती रहती है, उसमें खून के छींटे रहते हैं या कुछ ना कुछ ये होते रहता है, लैट्रिन में भी खून आते रहता है, ये सब बातें होती रहती है उसमें, बहुत सारा है उनको, तो दर्द तो पूछो मत, असहनीय वेदना जिसको कहेंगे, तो ये सब होते रहता है। कहा थे? हाँ, तो एक तो हनुमान का हो गया, दूसरा वैष्णव देवी का बताया। वैष्णो देवी क्या करती है? मनोकामना जगदम्बा पूरी करती है,
शुद्ध बनाती है,
शुद्ध, कुछ ऐसा दिया नहीं है कहीं, हाँ कुछ खास नहीं है, जनरल है। बाकी सबकी स्पेशलिटी है, लक्ष्मी की, सरस्वती की, शीतला देवी की, ज्वाला देवी की, काली की, उमा की, पार्वती, मतलब एक ही रूप है वैसे तो, एक ही है सब, पर जो लिखा जाता है हमेशा वो कि दिव्यता प्रदान करती है वैष्णो देवी,
शक्ति,
हाँ दिव्य कथा कहो, शक्ति कहो, वरदान कहो, सब कुछ। तो ये दो स्वरूप, तो बाबा ने फिर अमृत वेले क्या कहा कि बाबा ये दो चीजें देख रहे हैं, कौन सा, एक तो चिल्लाना और दूसरा चलाना, चलना, तो संसार इस तरह से चल रहा है,
धक्का
देके संसार चल रहा है। यहाँ इसको पापा ने पूरा किया, फिर उसके बाद में और भी दो तीन बातें हैं वहां पर, विदेशियों से मुलाकात, विदेशियों से बाबा ने कुछ उनके विशेषताएं बुझाई,
शक्तियों को आगे रखना है,
हाँ विदेशियों की, ऑस्ट्रेलिया में बुलाओ, इसके पहले इधर है कुछ, इधर विशेषता दूसरी है, यहाँ पहले विशेषता है दूसरी है, यहाँ दो विशेषताएं है, सबसे पहले तो उन्होंने इतना कुछ भोग लिया है कि उनके लिए त्याग आसान हो गया है, भारत वालों को अभी भी चस्का है थोड़ा, क्या है
आ रहे हैं
अभी उन्होंने क्या कर दिया, धक से छोड़ दिया, धक से त्याग कर दिया, वो सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट विशेषता, दो विशेषता है, ये पहली विशेषता है कि उन्होंने भोग लिया और सब छोड़ दिया, परंतु भारत का इधर हृदय विदीर्ण होता है भारतवासियों का छोड़ने में, भारतवासियों का, क्योंकि उन्होंने भोगा, धक से छोड़ दिया, मेहनत नहीं है, भारतवासी तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए मुश्किल है इनके लिए, उनके लिए सहज हो गया है, अज्ञान की बात है वो, जो वो तो संस्कार के लिए कहा, परंतु वो उनका संस्कार है, इसके लिए यहां उनको सहज हो गया, ये फर्स्ट विशेषता है। दूसरी विशेषता है वो आप जो कह रहे हैं, लोक लाज, डोंट केयर, पहले से ही सारे रिश्ते टूटे हुए, पहले से ही नष्ट मोह है, और यहां तो बहुत सारी लोक लाज है, यहां बहुत सारी परंपराएं हैं जिसमें फंसे हुए हैं, कुछ भी पूछो तो बोलते परंपरा से चालू है, कोई भी चीज पूछो, वो पिछली बार बताया था ना बिल्ली वाला, बताया था ना इधर, हाँ तो बस वो बिल्ली को लटका के रखा है, कब लटका के रखा, क्यों लटका के रखा, कब वो महात्मा गया कुछ पता नहीं, बस परंपराएं चालू है, ऐसी मन में भी कुछ परंपराएं है हमारे जो हमने बना रखी है वो चालू है, तो वो एक बात, तो ये दो विशेषता बाबा ने उनकी कही, भारतीयों से थोड़ा आगे, अगर देखा जाए तो इसमें एक सूक्ष्म, अगर केवल भारतीय होते तो बाबा कहते अच्छा किया, भोगा ही नहीं कुछ, तुमको वैसे ही भगवान मिल गया, भोगने की जरूरत ही नहीं, व्यर्थ है सब
जो सामने,
इनको कह रहे कि बहुत अच्छा भोग लिया ना, अब देख लिया ना, अब देखो अभी आ जाओ इधर, अभी रस खत्म हो गया भोग कर, रस तो तब रहता है ना कि क्या है क्या है क्या है, एक बार भोग लिया अभी गया रस, अभी शांत हो जाए, इसके लिए जो गृहस्थ में रहते हैं ना और फिर ज्ञान में आए, उनकी पवित्रता बड़ी पक्की रहती है, भोग लिया देख लिया क्या है, और अभी तो कोई सवाल ही नहीं, अब भगवान मिल गया तो छूट गया, और जो कुमार और कुमारी रहती है उसमें क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है रहता है, थोड़ा खुद तो अनुभव करके देखे, पता है जलता है हाथ तो भी 100 लोगों ने बताया मत डालना, पर देखे तो कैसा जलता है, क्या होता क्या है जलने के बाद, हाँ खड्डे में गिरो फिर निकलो बाहर, ऐसे बहुत सारे हैं कुमार, जो पहले कुमार थे, फिर पहले कुमार थे बहुत 10 साल तक सेंटर में, फिर अधर कुमार बने और अभी अपने परिवार सहित ज्ञान में है, ऐसे भी बहुत है कि पूरा अभी परिवार ज्ञान में चलता है, कुछ कुछ ऐसे भी है जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी है कुछ कुछ, कि जो पहले ज्ञान में थे फिर ज्ञान छूट गया, शादी वगैरह कर ली, अभी बच्चे कहते हैं बच्चे भी शिव बाबा के, अभी क्या बोले बोलने ना, इधर अभी ज्ञान का कुछ भी असर कुछ भी नहीं है ना, मुरली ना कुछ, पर कहती है बच्चे और ये सारा सारा परिवार ही शिव बाबा का,
अच्छे सेवाधारी का तक मांगी
लागू, उसको क्या कहेंगे, तो ये विदेशियों की बाबा ने यहाँ दो विशेषता है, यहाँ फिर से सुनाई, तो उसके बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें बहुत अच्छा कहा कि गाइड, एक गार्ड और गाइड, शक्तिया गाइड है और ये गार्ड है, तो गार्ड ने गाइड को आगे रखे, आगे रखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर पूछा ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं आते बाबा, तो बाबा तो रोज विश्व भ्रमण करते, सबको देखते भी है, सबको संभालते भी है, अमृत वेला
भले ही ना देखें लेकिन बाबा
सोए है, भले सोए पड़े हुए हैं परंतु बाबा तो चक्र लगा, चक्कर लगाते हैं, तो चाहे बच्चे कुछ भी करें बाप तो चक्कर लगाते। और फिर इसमें समान बनने की बात भी कही है ब्रह्मा बाबा की, जो समान बनेंगे, समान बनेंगे वही साथ में आएंगे, उसी रूप में साकार रूप में जो है वहां पर श्री कृष्ण को झूले में साथ आएंगे, उसके भिन्न भिन्न रूप में साथी होंगे, श्री कृष्ण का जो रूप है इसमें बहुत सारी छोटी 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 जो अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहेंगे उसकी भी बात कही है बाबा। फिर एसी टिकट की बुकिंग, वहां पर पैसे लगता है ना ज्यादा, तो यहाँ पर पैसा कौन सा है, विजय भाव,
हर कंडीशन,
हर कंडीशन में सेफ रहने वाले उनको एसी का टिकट मिलेगा, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में, हर समस्या में, सदा सेफ, सदा समान मैं विजयी आत्मा हूं, इसमें अगर है तो सेफ है। ये समान दिया, संकल्प दिया, देखो परिस्थितियां कुछ और ही है पर समान क्या है, जो शुरुआत में हमने जहां से चर्चा चालू की ना, मैं विजयी आत्मा हूं, अभी ये विजयी आत्मा से ये परिस्थिति कैसे मिटेगी, ये तो प्रश्न ही है, एक परिस्थिति तो एकदम भिन्न भिन्न रूप की है, परंतु यही एकमात्र विधि है, क्योंकि हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो रहे हैं और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते ही आत्मा के सातों गुण यहां इमर्ज हो रहे हैं, और आत्मा के सातों गुण इमर्ज होते ही वो उस आत्मा तक भी जा रहे हैं और उसमें भी वो बाहर निकल रहे, या फिर ये आत्मा के संकल्प सारे प्रकृति में जा रहे हैं, प्रकृति में, और इसमें रिएक्शन होता है और वही परिस्थितियां क्रिएट होती है। जो भी हम सोच रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का नियम यही है कि मैं अगर सोचूं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो सीधा बेड पे तो बीमार, वो मैं सोचूं मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, पैसे आए कहां, क्यों नहीं आते पैसे। एक पेशेंट था वो हमेशा ही रोते रहता था, आज उसकी बेटी एडमिट हुई, वो ठीक हुई तो बेटा एडमिट हुआ, फिर वो ठीक हुआ तो वो पत्नी एडमिट हुई, ऐसे कुछ ना कुछ होते रहते थे और हमेशा आके रोता था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और जितना बोलता था उतना और ज्यादा दुखी होता था और ही कम पैसे रहते थे। तो जब बीमार है तो क्या संकल्प, पैसे नहीं है तो संकल्प करो कि मैं धनवान हूं, तो ये संकल्प जाएगा प्रकृति में, प्रकृति, और प्रकृति उसके जैसे संकल्प को ढूंढेगी, फिर वो उसकी रिएक्शन होगी और नई परिस्थितियां क्रिएट होगी। इसके लिए बाबा ने कहा फरिश्ता बनने की विधि क्या है, मैं फरिश्ता हूं, ये है विधि, स्वीकार कर लो, एक तो विजुअलाइजेशन और एक स्वीकार और एक विजुअलाइजेशन, जो बनना है उसको देखना। हम जब एमबीबीएस में थे कोई भी कभी भी कोई पढ़ता नहीं था, फर्स्ट एमबीबीएस में सब कुछ ना कुछ करते रहते थे, मस्ती करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, कभी किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की, परंतु हॉस्टल में जब रहते थे तो अपने जो ये था ना कमरा उसके बाद में लिखते, जैसे डॉक्टर अनिल तो लिख देंगे आगे एमएस एफआरसी, ऐसे चार पांच डिग्रियां लिख देते। अभी डॉक्टर विक्टर तो कुछ बने ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में है अभी, अभी तो रैगिंग विगिंग से निकल के बाहर आए हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, और अभी हॉस्टल में आए हैं एंड में, तो ये सब लिखते थे, पर वो देखते रहते थे कि मैं ये बनूंगा, किसी को चार साल, कोई दो दो बार फेल हुआ, पर अभी 15 साल के बाद पीछे जब देखता हूं तो जिसने जो लिखा था वो बन गया है, वो पढ़ाई कुछ नहीं किया, प्रयत्न कुछ भी नहीं, केवल क्या किया, एक विजुअलाइजेशन कि देखा कि ये मैं हूं। जैसे हमारे जो डीन थे ना, पूरा मेडिकल कॉलेज के हेड, उन्होंने एक अनुभव सुनाया था कि जब मैं पहला दिन इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया, पहला दिन एक संकल्प लिया था कि एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का हेड बनूंगा। कितना ऊंचा संकल्प है, लोग हंसेंगे अगर बोलेंगे तो, परंतु ऐसे ही संकल्प पूरे होते हैं। क्या किया उस संकल्प को, रोज उस संकल्प को देखना, विजुअलाइज करना और लाइव देखना उसको, जैसे अग्नि में लिखा हुआ हो आकाश में, या उस स्वरूप को देखना, उसमें रोज रंग भरना। ये सबने ऐसे ही तो किया, चाहे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या अब्दुल कलाम सारे सर, तो वो क्या होता है, वो संकल्प से परिस्थितियां निर्माण होगी। फिर है तो बहुत ही, किसी को बताओ तो हंसेंगे लोग, परंतु वैसे ही जो हम सोचेंगे वही संकल्प परिस्थितियों को निर्माण करेंगे। और हम क्या करते हैं, परिस्थिति आने के बाद परिस्थिति का सोचते हैं, इसने मुझे ऐसा किया, मैं क्या कहूं अगली बार, इसने मेरे साथ ये किया, मैं क्या करूं इसके साथ। हम इन परिस्थितियों में छोटा छोटा सोच रहे, थोड़ा इधर से ऊपर जाए और कुछ और बड़ा सोचेंगे ना, तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा, परिस्थिति भी गिर जाएगी। तो बहुत ही सूक्ष्म बात है यहां पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया, फिर बाबा ने थोड़ा मॉरिशस से भी बात की है, ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं, और दो तीन बातें उधर है, टाइम हो रहा है तो कल तो सुनेंगे उसको, और थोड़ा अच्छे से गहराई से उसका चिंतन करना। जो भी इस तरह मुरली आती है मेरे दिन, इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जैसे ये मुरली है कोई भी, एक बार तो सुन लेंगे, ठीक है, सुनना काफी नहीं है, इसका स्टडी चाहिए। जैसे स्टडी की जाती है, जैसे बच्चे रिसर्च, जैसे कोई थीसिस लिख रहा है, थीसिस में कितना सारा रेफर किया जाता है, उस तरह से जैसे इस पे थीसिस लिखना है, एक 24 घंटे का टाइम है इसके लिए आपके पास अगर, तो सबसे पहले तो इसका क्या भाव है उसको समझ लेना, कि जैसे इसको पैराग्राफ में डिवाइड कर लो, ठीक है, कितने पैराग्राफ, 1 2 3 4 यहां तक छोड़ दो, ये दूसरा टॉपिक यहां चालू है, तो ये अगर 4 टॉपिक है तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या सार है उसको वहां से हटा एक्सट्रैक्ट कर लेना, कि इसमें ये दो बातें हैं बस, इसमें जैसे एक समान है दो समान है उसको हमने वहां से हटा दिया, निकाल दिया। फिर दूसरा जो था यहां पे, ये अलग अलग प्रकार के जो है, तो जैसे ये चिल्ला रहे, वो चिल्ला रहे, इसकी हमने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने से क्या होता है, ये इधर रहेगी अभी लिस्ट सामने, फिर हम उसके विस्तार में जा सकते हैं, नहीं तो इसमें ही रहेगा ना, तो इधर भी है, कहां कहां जाए, इसके लिए उसके फिर विस्तार में जा सकते हैं। इस लिस्ट के एक एक पारिवारिक समस्याओं में कितना है, बच्चों की पढ़ाई के बोझ का ही कितना है, एक एक वो वहां आ गया। फिर क्योंकि बाबा जो घुमाता है ना मुरली, ऐसे इधर उधर 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 घुमाता है, जैसे यहां देखो चिल्लाने की बात एक्चुअली इसके बाद आनी चाहिए थी, क्योंकि यहां दो बातों का वर्णन है, पर वो पहले ही डाल दी,
कारण
नहीं, बाबा का अपना वो मंदिर है ना इधर, लहरी बाबा का, शिव बाबा का एक मंदिर भी तो है, उसका तो लहरें चलती है ना, तो उसको जो मर्जी है वो, उसको बोलने वाला टोकने वाला थोड़ी कोई है, बाबा को कोई बोलेगा आपने ये इधर क्यों बोला, ये पैराग्राफ इसके नीचे आना चाहिए था, ऐसा कौन बोलेगा उसको, अथॉरिटी है, जो वो कहेगा वो राइट। तो उसको पकड़ में आने के लिए उसका बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ये पीएचडी लेवल की स्टडी है अव्यक्तवाणी इज पीएचडी लेवल की स्टडी, ये कोई साकार नहीं है कि अब आपका समझ बाप को याद करो, तुम चलो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तुमको तो ये भी करना है वो भी करना है, सेवा भी करना है, दिव्य गुण धारण करना है, ये ऐसी बातें इसमें नहीं आती है, इसमें कुछ फिलोसॉफिकल बातें है, हायर लेवल की तत्व ज्ञान की बातें है, मनोविज्ञान भरा हुआ है इसमें, इसमें संसार का समाचार है। ये वाक्य यहां पर भी बोला जा सकता है कि आज बाप दादा संसार का समाचार सुना रहे हैं, यहां पे वो लास्ट में वो इधर है, पर वो बाद में बोला, तो इधर की बात उधर, और वो सबको जोड़ देना एक तरीके, तो ये मुरली कुछ हमारे पल्ले पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसी कितनी मुरली आई और गई, क्या था वो मत पूछो, पर अच्छी बहुत थी, और बहन ने तो बहुत ही अच्छी सुनाई थी, तुमको आना चाहिए था, कहां थे वो, तो इसमें उसमें से जैसे अभी विशेषता सुनाई, कौन सी विशेषता है, बस दो विशेषता इसमें से निकाल दिया, अब ये मुरली अगर चली भी गई वो दो विशेषता हमारी बुद्धि में है, और जब भी कोई विदेशी भाई मिले दिखे तो वो याद करना इसके लिए क्या बोला था, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले मुलाकात है, अगर कोई पता है आपको ये ऑस्ट्रेलिया का, उसको देखकर सबसे पहले याद करो कि उस मुरली में उसके लिए क्या क्या कहा था, जैसे ये उसके लिए ही है, ये हम इसके लिए कर रहे ताकि याद रहे ये सब बातें, ये बाबा का वो एक रिंग के लिए भी, बाबा शब्द एक रिंग है, तो इस तरह से उसको सुबह सुन लिया, फिर पढ़ा, फिर कुछ लिखा हो सके तो, या फिर उसकी चर्चा की थोड़ी बहुत, चर्चा करेंगे तो याद रहेगा, जैसे अभी हमने चर्चा की ना तो ये थोड़ा याद रहेगा, अगर चर्चा नहीं की और वैसे ही छोड़ दिया तो गया।
वरदान का जो आपने बताया था ना भैया, डिफ्रेंशिएट करके मेरे लिए काफी अच्छा रहा, मैंने जो किया।
हाँ, वरदान जो है ना, हर दिन का वरदान, उसको जैसे इस हफ्ते में ही ले लो, कितने अच्छे, एक तो रूहानी सेवाधारी का वरदान था, वो पहला वरदान तो हमने मंडे को उसी दिन डिस्कस कर लिया था, वो अकाल तख्त वाला, तीन चीजें उससे होती है, और भी ये दो तीन वरदान कितने, उसमें बहुत गहराई रहती है, उसको भी आप टुकड़े टुकड़े कर दो, फ्रैगमेंट कर दो उस वरदान को, एक पेज पर एक ही वरदान, एक लाइन एरो फिर इधर एरो उधर एरो इस तरह से कर करके, ताकि वो क्या है उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है। जब तक आप टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे वो याद नहीं रहता है, और जब तक याद ही नहीं तो चिंतन भी नहीं, और चिंतन ही नहीं तो उन्नति भी नहीं। और योग भी हमारी जो क्वालिटी योग की है ना उसको उसको बढ़ाते जाना, तो उसका आधार ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन, अध्ययनशील बनना है, स्टूडियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, विद्यार्थी है ना तो स्टूडियस होते हैं विद्यार्थी, दिन रात पढ़ते रहते हैं, तो वैसे हमको बनना।
हनुमान को भी पोते दिखाते
हैं।
हनुमान को भी पोते दिखाते
क्या दिखाते हैं हनुमान को?
पोती,
हनुमान के पास वो तो है ना, ज्ञान गुण सागर कहा है उसको, फिर वो उसकी महिमा बहुत है, बुद्धिमान अति चातुर।